हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। समर ऑफिस बिल्डिंग के नीचे से निकल ही रहा था कि उसके पैरों के पास कुछ आकर गिरा। उसने ऊपर देखा, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो अपनी जगह पर रुक गया और एक कदम पीछे हटते हुए झुककर अपने पैरों के पास पड़ी चीज उठाई। वो देखने में किसी महंगे डिजाइनर चेन ब्रेसलेट जैसी लग रही थी। उस ब्रेसलेट में बीच में एक आर अक्षर लटका हुआ था, अंग्रेजी में, जिस पर सफेद हीरे भी चढ़े थे। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसे कोई खरोच नहीं आई थी। इसका मतलब था कि वो काफी मजबूत बना था। समर उसे हाथ में उठाकर इधर उधर और बिल्डिंग की ओर देखने लगा, किंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कंधे उचकाते हुए समर ने खुद से पूछा, ये कहाँ से आया? जरूर ऊपर से ही गिरा है, क्योंकि अभी यहाँ नहीं था। किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर ही मेरा ध्यान इसकी ओर गया। अब क्या करूँ? इसे अपने साथ रख लूँ या यहीं छोड़ दूँ? नहीं, यहाँ छोड़ूंगा तो कोई और ले जाएगा। वैसे ये किसका हो सकता है? वो बिल्डिंग के गेट के सामने खड़ा होकर ब्रेसलेट को हाथ में देख रहा था। तभी गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की नज़र उस पर और उसके हाथ में चमकते महंगे ब्रेसलेट पर पड़ी। वो देखकर तुरंत वहां आया और समर की ओर देखते हुए बोला, ए लड़के, कौन हो तुम और ये कहां से मिला तुम्हें? ये तुम्हारा तो नहीं लग रहा। समर ने सिक्योरिटी गार्ड को सच बताया। हाँ, ये मेरा नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी ये मेरे पैरों के पास आकर गिरा तो मैंने उठा लिया। लेकिन तुम इसे पहचानते हो, तुम्हें पता है ये किसका है? समर की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और फिर आगे बढ़कर कहा, सच बोल रहे हो क्या? समर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने तो कहा ही है कि ये मेरा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा नहीं है तो फिर लाओ, मुझे दे दो, मैं जिसका होगा उसे पहुंचा दूंगा। समर ने कुछ सोचते हुए ब्रेसलेट उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन फिर उसे थोड़ा शक हुआ। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, लेकिन मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुमने अपने पास रख लिया तो, वैसे भी ये इतना महंगा लग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़े गुस्से से कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो लड़के, अब तुम ज्यादा चालाकी कर रहे हो और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुझे लग रहा है तुम्हारी ही नीयत खराब है। ये क्या हो रहा है वहाँ पर? पीछे से एक तेज आवाज आई। दोनों ने आवाज की ओर देखा। वहां ऋषभ खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड उसे अच्छी तरह पहचानता था। उसने हल्का सा सिर झुकाते हुए कहा, सर, ये लड़का, इसे किसी का ब्रेसलेट मिला है और ये मुझे वापस नहीं कर रहा। ऋषभ ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, किसी का नहीं, ये ब्रेसलेट मेरा ही है। तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूंगा। ऋषभ की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने फिर से सिर झुकाया और चुपचाप चला गया। समर ऋषभ को पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे ऋषभ के साथ अपनी पिछली दोनों मुलाकातें याद आ गईं। सिक्योरिटी गार्ड के जाते ही समर ने ब्रेसलेट ऋषभ की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्या करना है? ये लो, अगर ये ब्रेसलेट तुम्हारा ही है तो। एक भौं उठाकर उसकी ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर ऋषभ ने पूछा, हाँ, मेरा ही है, कोई शक है क्या तुम्हें इस बात पर? समर ने ब्रेसलेट अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, नहीं, लेकिन एक मिनट, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ऋषभ ने उसी तरह मुस्कुराते हुए पूछा, इसका मतलब कि शक है? समर ने कहा, शक है तो तुम दूर कर दो ना। ऋषभ ने सारी बात समझाते हुए कहा, ऋषभ मल्होत्रा मेरा नाम है। उस ब्रेसलेट में मेरे नाम का पहला अक्षर है और उसमें 11 हीरे हैं। इसके अलावा वो ब्रेसलेट मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था। अभी भी यकीन नहीं हो तो क्या तुम्हें बाइंग रिसीप्ट भी देखनी है? ऋषभ की इतनी जानकारी देने के बाद समर ने जल्दी से ब्रेसलेट उसके हाथ में रखते हुए कहा, अरे बस इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। लो, पकड़ो अपना ब्रेसलेट। लेकिन एक बात बताओ, ये ऊपर से यहाँ कैसे गिर गया? लॉक तो काफी मजबूत है इसका। समर का सवाल सुनकर ऋषभ बगला झांकने लगा। उसने खुद ही तो समर को रोकने के लिए ब्रेसलेट ऊपर से फेंका था। ब्रेसलेट का लॉक सच में काफी मजबूत था, जो अपने आप नहीं खुलता। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो जल्दी से कोई झूठा बहाना सोचने लगा। समर उसके चेहरे की ओर देख रहा था। ऋषभ उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी ऋषभ ने कहा, अरे, वो विंडो के लॉक में फंस गया था ये ब्रेसलेट। मैं खोलकर निकालने लगा, तभी ये पता नहीं कैसे नीचे गिर गया। अच्छा हुआ कि तुमको मिला, किसी और को मिलता तो शायद वो लेकर भाग जाता। थैंक्स। समर को उसकी बात अजीब लगी लेकिन वो कुछ नहीं बोला। ऋषभ अपने हाथ में ब्रेसलेट पहनने की कोशिश करने लगा लेकिन एक हाथ से लॉक नहीं बंद हो रहा था। समर ने सिर हिलाते हुए आगे आकर कहा, जरूरी नहीं है सारे काम खुद से ही हों। अगर कोई सामने खड़ा हो तो उससे मदद मांगने में तुम छोटे नहीं हो जाओगे। समर ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और ब्रेसलेट पहनाते हुए उसका लॉक बंद करने लगा। ये करते हुए ऋषभ उसके चेहरे की ओर देख रहा था। समर भी उसकी नज़रों को महसूस कर रहा था लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद समर ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, ये लो, हो गया। पता नहीं तुम अमीर लोगों में इतना एटीट्यूड क्यों रहता है। ये बोलकर सिर हिलाते हुए समर वहाँ से चला गया। तभी ऋषभ ने पीछे से तेज आवाज में कहा, पहली बात, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पापा का है वो सब जो कुछ भी तुम देखते हो। रही बात एटीट्यूड की, तो वो शायद है थोड़ा। एटीट्यूड भी नहीं होगा तो फिर इंसान किस काम का। उसकी बात सुनकर समर रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, ठीक है मिस्टर एटीट्यूड, दिखाओ अपना एटीट्यूड, मैं तो चला। अरे लेकिन, ऋषभ कुछ कहना चाहा लेकिन समर वहाँ से बहुत आगे बढ़ गया था, जहाँ से ऋषभ की आवाज़ तक नहीं पहुँच रही थी। बेबसी से ऋषभ ने हाथ और सिर नीचे कर लिए और कुछ भी नहीं बोला। वो वापस ऑफिस के अंदर चला गया। दूसरी ओर वृंदा मैनसन ऑफिस का काम करण के साथ मिलकर खत्म करने के बाद शिविका और करण शिविका के कमरे में थे। काव्या करण की गोद में सो चुकी थी। करण प्यार से सोई हुई काव्या के सिर पर हाथ फेर रहा था। शिविका ने प्यार से उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, करण, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा काव्या के साथ क्या कनेक्शन है और क्यों तुम उसके साथ इतना ज्यादा जुड़ गए हो इतनी जल्दी, लेकिन सच कहूँ तो यही एक कारण है तुम्हारे साथ शादी करने का। शिविका की बात सुनकर करण ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, इस बात का जवाब मुझे भी नहीं मिला, लेकिन शायद काव्या इतनी प्यारी है कि उससे तो कोई भी जुड़ जाएगा। रही बात कारण की, तो मेरे लिए शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि मुझे शादी के बाद काव्या के साथ रहने को मिलेगा। करण की बात सुनकर शिविका खुलकर मुस्कुरा दी। तभी उनकी बातों की आवाज़ से काव्या हल्का सा हिली। काव्या के जागने के डर से घबराते हुए करण ने शिविका की ओर देखा। शिविका ने उसे इशारे से रिलैक्स रहने को कहा। करण ने काव्या को उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया, जो शिविका के कमरे के बगल में था। जब वो वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि शिविका बिस्तर का सिरहाना और साइड टेबल पकड़कर एक पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी किंतु आगे नहीं बढ़ पा रही थी। दरवाजे से अंदर आते हुए करण ने शिविका को इस तरह देखते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें, फिर से क्यों खड़ी हो गई तुम, काव्या के कमरे में जाना है क्या? शिविका ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए खड़ी तो होना ही पड़ेगा ना।
शिविका ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन करण से मदद नहीं मांगी। करण थोड़ा दूर खड़ा होकर उसे स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। वो एक दो कदम आगे बढ़ी लेकिन पूरी तरह लड़खड़ा गई, क्योंकि वो सिर्फ एक पैर से ज्यादा आगे नहीं जा पा रही थी। उसने बिस्तर का सिरहाना पकड़ा हुआ था और वॉशरूम वहां से 10-20 कदम दूर था, जो उसे पहाड़ जैसा लग रहा था। दीवार का सहारा ले शिविका गिरने से बच गई लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। उसने नज़र उठाकर करण की ओर देखा, जो सवालिया नज़रों से उसकी ओर देख रहा था। उसे इस तरह देखते हुए पाकर शिविका को थोड़ा गुस्सा आया और वो गुस्से में बोली, वहाँ खड़े होकर देख रहे हो लेकिन आगे आकर ज़रा सी मदद नहीं कर सकते। करण ने जवाब दिया, हाँ तो तुम भी मदद के लिए बोल सकती हो, इस तरह खुद ही चलकर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम तो इंडिपेंडेंट लड़की हो ना, तो मुझे लगा कि कहीं खुद से मदद करूं तो फिर डांट सुननी पड़े, लेकिन वो तो फिर भी सुननी पड़ गई। शिविका थोड़ी शर्मिंदा हो गई क्योंकि उसने करण को डांटा था जबकि उसने भी मदद के लिए नहीं बोला था। करण आगे आया और शिविका को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की ओर ले गया। शिविका कुछ नहीं बोली और एकटक उसकी ओर देखती रही। क्रमशः